आदित्य खड़ा हो गया। पापा, आप ही बताओ, ऐसा हम लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने हमें ऐसे छोड़ दिया? उसकी आंखों में आंसू थे। मॉम, आप ही बताएं, आपने तो कहा था मैं आपका तीसरा बच्चा हूँ, बेटा कहा था आपने मुझे, फिर ऐसे क्यों छोड़कर चले गए आप लोग मुझे? आपको एक बार भी अपने बेटे की याद नहीं आई इतने सालों में? उसकी बात सुनकर दीपा जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा कहा था इसीलिए छोड़कर आ गए। कोई माँ अपने बेटे को मुसीबत में कैसे देख सकती है, खासकर अगर वो मुसीबत हमारी वजह से हो, दीपा जी रोते हुए बोली। दीपा जी की बात सुनकर आदित्य हैरानी से उन्हें देखने लगा। आप सभी कहानी बंद करें, पहेलियां मत बुझाओ, असल में क्या हुआ था मुझे वो बात बताओ। मैं जानना चाहता हूँ, आखिर क्यों मुझे मेरे बच्चों से दूर होना पड़ा? मेरा भी तो हक था अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखने का, आदित्य ने उन सभी से कहा। आप लोग बैठ जाएं, मुझे सारी बात बताओ। आदित्य को ऐसे बोलते देखकर आदिति और अदा दोनों ही डर गई। वे दोनों अपनी माँ की टांगों से जाकर लिपट गईं। दोनों को ऐसे डरा हुआ देखकर आदित्य उन दोनों के पास आ गया। अपने घुटनों के बल बैठकर उसने आदिति और अदा को अपने गले से लगा लिया। सॉरी बेटा, ऊपर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब मैं ऐसा ऊंची आवाज़ में नहीं बोलूंगा। वो दोनों को साथ लेकर सोफे पर बैठ गया। ऐसा करो, अपनी मॉम को भी यहीं पर ले आओ, आदित्य ने अदिति से कहा। आदित्य माना को भी अपने पास बैठाना चाहता था, आखिर माना में ही तो उसकी जान बसती थी। इतने साल उसने माना के बिना कैसे गुजारे थे ये उसे ही पता था। अदिति माना के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर ले आई। अदा आदित्य की गोद में तो अदिति माना की गोद में बैठ गई थी। हाँ, अब बताओ तुम लोग मुझे क्या हुआ था? आप लोगों ने ऐसे रातों रात अपना शहर और अपना घर क्यों छोड़ दिया? क्यों अपने मरने की झूठी खबर फैलाई? आदित्य आराम से बैठते हुए बोला। उसे ऐसे बैठे देखकर मेहर कहने लगा, जीजू, हम तो केवल माना को साथ लेकर आए थे, अब आपको तीन लोग वापस दे रहे हैं, आप क्यों हम पर गुस्सा हो रहे हैं? तुम भाई को छोड़ो, मुझसे बात करो। तुम मुझे ऐसे धोखा देकर क्यों भागाए? मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझसे बात करो तुम। निशा ने खड़े होकर उसका कॉलर पकड़ लिया। प्लीज़ जीजू, आप निशा को कहें कि वो बैठ जाए, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें ना करें। मैं नहीं कहने वाला उसे कुछ भी, जो तुम लोगों ने किया है अब उसका सिला तुम लोगों को मिलेगा ही। वो तुमसे प्यार से कैसे बात कर सकती है? पता है पिछले 7 सालों में निशा ने कितना दर्द सहा है, वो कितना बदल गई है, तुम सोच भी नहीं सकते मेहर, आदित्य मेहर से कहने लगा। अगर माना भारी के 2 बच्चे हैं तो तुम्हारी भी होंगे, तुमने भी शादी कर ली होगी, कहाँ है तुम्हारी बीवी और बच्चे? मैं उसको बताती हूँ कि हम दोनों की कभी सगाई हुई थी, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे कभी, निशा मेहर से बोली। निशा ने उसका कॉलर छोड़ दिया और कमरे में देखने लगी। मेहर आराम से सोफे पर बैठ गया और ऊंची आवाज में बोला, मैंने किसी के साथ शादी नहीं की है, तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में कोई नहीं आया, तुम्हें छोड़कर मैं किसी को चाह ही नहीं सकता। जब जब तुम मुझे पागल जैसे चाहती हो तो क्या मैं भी तो तुमसे प्यार कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर निशा बाहर आ गई। क्या सच कहते हो, इन 7 सालों में तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आया? तुम अकेले हो, तुम्हारी यादें थी ना मेरे साथ, अकेला कहाँ था मैं? एक पागल सी लड़की ने मुझे इतना चाहा था कि मैं उसे चाहकर भी भूल नहीं पाया। क्या तुमने शादी कर ली इन 7 सालों में? नहीं, जब तुम जैसी नकचढ़ी लड़की मुझे नहीं भूल सकी तो मैं उस जिद्दी नकचढ़ी लड़की को कैसे भूल सकता हूँ? जब जब जिद्दी और नकचढ़ी लड़की तुम्हें इतनी ही प्यारी थी तो तुम उसे छोड़कर गए ही क्यों? क्यों छोड़ा तुमने उसे? निशा ने पूछा। तुम दोनों अपनी बातें बाद में कर सकते हो, ऐसी बातें अकेले में की जाती हैं, सबके सामने नहीं। अब मुझे असली बात बताओ, आदित्य मेहर और निशा पर गुस्सा हो रहा था। भाई, आपको तो अपनी बीवी के साथ साथ बच्चे भी मिल गए, मगर मुझे लगता है जिसके साथ मेरी सगाई हुई थी उसने तो कहीं और शादी कर ली है। तुम चुप कर जाओ निशा, मुझे बात करने दो, मेहर ने निशा से कहा। मुझे लगता है मुझे जहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मेरी अब यहाँ पर जरूरत है, जो उनके साथ डिटेक्टिव आया था वो कहने लगा। आप कौन है? मेहर ने उससे पूछा। मैं डिटेक्टिव हूँ, आपका पता मैंने ही ढूंढा है, आपने हमें ढूंढने के लिए जासूस लगाया था, आपको शक था कि हम लोग मारे नहीं जिंदा हैं, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? मुझे तुम लोगों का नहीं पता था, जब मैंने पहली बार माना को देखा तो मुझे बिल्कुल माना जैसी लगी, फिर मुझे पता चला इसके 2 बच्चे हैं और इसके पति का कोई पता नहीं, तो मैंने इसलिए इसके पीछे डिटेक्टिव लगा दिया। मैं इसके बारे में जानना चाहता था, इसकी शक्ल मेरी माना के जैसी क्यों है? अब मुझे पता चला ये मेरी माना ही है, ये तो ब्लू लेंस पहनकर मुझे बना रही थी, आदित्य माना की तरफ देखते हुए बोला। आदित्य की आंखों में बेशुमार प्यार था जो वहां बैठे हुए हर शख्स को दिखाई दे रहा था। मैं बेवकूफ नहीं बना रही थी, ऐसा कौन करता है, किसी को पहली बार देखते ही शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जैसा कि आपने किया मेरे साथ। अदिति और अदा से आप एक बार मिले और इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे आप। मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ही बेटियां हैं, मगर मेरा दिल तो जान गया था, इसीलिए तो इन दोनों पर इतना प्यार आया था। निशा को तो मैंने इसीलिए बुलाया था कि मैं अदिति और अदा को गोद लेना चाहता था। मैंने इससे कहा कि जहां आकर कोई दिमाग लगाओ कि मैं इनकी मॉम से इन बच्चों को कैसे ले सकता हूँ। फिर पता चला कि तुम इसकी मॉम हो तो फिर तो बात ही कुछ और हो गई, फिर तो मुझे बच्चों के साथ साथ तुम भी चाहिए थी, आदित्य ने मुस्कुराकर कहा। अब आप दोनों ने अपनी लव स्टोरी शुरू कर दी। भाई, पहले इन लोगों से पूछो कि ये लोग हमें छोड़कर यहाँ पर क्यों आए, क्यों इन लोगों ने अपनी मरने की झूठी खबर फैलाई। भाई, आप भाभी से पूछो, मैं महेश से पूछता हूँ, हम दोनों बाहर चले जाएं जहाँ से, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। निशा ने कहा, नहीं, हम यहीं पर बात करते हैं ना सभी के साथ, बाहर जाने की क्या जरूरत है रात के इस वक्त, महेश जल्दबाजी में बोला। निशा और महेश की बात सुनकर आदित्य हंसने लगा। जब तुम इससे इतना डरते हो तो फिर तुम इसे छोड़कर क्यों आए थे? ऐसा करो, पहले तो मुझे अपनी बात बता दो, फिर तुम दोनों चले जाना जहाँ से, आदित्य ने कहा। ठीक है, तुम जल्दी जल्दी से बताओ जो भी बात थी, फिर हम लोग बाहर चलेंगे, निशा बोली।